हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रानी परी के गायब होते ही तारा का ध्यान अचानक बिस्तर पर गया। उसने देखा कि अमन के शरीर में धीरे धीरे हलचल होने लगी थी। अमन को होश आने लगा था। जैसे ही तारा ने अमन की ओर देखा, वो तुरंत उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। जैसे ही तारा ने अमन का हाथ पकड़ा, अचानक अमन ने अपनी आंखें खोल ली और अपने आसपास अच्छी तरह से देखने लगा और अचानक उठकर एकदम से बैठ गया और अपना सिर पकड़कर धीरे धीरे उसमें हाथ मारने लगा। अमन को चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे एक नया जीवन मिला हो। अमन ने जैसे ही तारा को देखा, वो उसे देर तक देखता रहा। जैसे ही तारा ने अमन का हाथ पकड़ा, अचानक अमन ने अपनी आंखें खोल ली और अपने आसपास अच्छी तरह से देखने लगा और अचानक उठकर एकदम से बैठ गया और अपना सिर पकड़कर धीरे धीरे उसमें हाथ मारने लगा, मानो उसके सिर में झुनझुनाहट सी हो रही हो। उसे सब कुछ एक स्मृति की तरह याद आ गया था कि आखिरकार उसने क्या क्या किया था। तभी वो तारा की ओर देखते हुए कहने लगा, ये सब कुछ मैंने किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतना बड़ा वहशी दरिंदा बन बैठा था कि मैं अपने ही ऑफिस के साथियों का खून पिया। ओह शिट, ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैं एक पिशाच के काबू में आ सकता हूँ? कैसे? तब तारा ने अमन को समझाते हुए कहा, इसमें आपकी किसी तरह की कोई गलती नहीं है। आपने उस पिशाच से लड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो पिशाच आप पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। तो आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है। जो कुछ हुआ वो आपसे करवाया गया है, वो सिर्फ उस पिशाच ने किया है। तभी अमन थोड़ा आगे बढ़ा और तुरंत तारा को गले से लगा लिया, पूरी तरह से टाइट हग कर लिया और कहने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कहीं तुमसे दूर ना हो जाऊं। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुमसे दूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक पल के लिए भी मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ। उस पिशाच से लड़ते वक्त भी बार बार मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा था, लेकिन मैं उस पर विजय हासिल नहीं कर पाया। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था तुम किसी न किसी तरह से मुझे ज़रूर बचा लोगी, क्योंकि मेरी बीवी कोई आम लड़की नहीं है। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा उसे चौंक कर देखने लगी। तब अमन आगे बोला, मेरी बीवी मेरे होने वाले बच्चों की माँ है, तो वो आम औरत बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ऐसा कहकर अमन ने अपना सिर तारा के सिर से टकरा दिया और जल्दी ही दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ खुलने लगी। तारा अमन की ओर देखने लगी और जल्दी ही उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी, क्योंकि पिशाच बनने से पहले अमन और तारा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खोए हुए थे। और अब जब अमन ने अपना सिर तारा के सिर पर टकराया और साथ साथ उन दोनों की सांसें भी एक दूसरे के साथ टकराने लगी, जल्दी ही अमन ने तारा के नर्म मुलायम होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें पैशनेटली चूमने लगा, क्योंकि तारा को अपने करीब पाकर अमन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था, क्योंकि तारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ऊपर से वो एक परी थी, तो उसकी खूबसूरती दिन पर दिन सिर्फ बढ़ती ही जा रही थी। और जब से जिन्नातों का वंशज उसके पेट में आया था, तब से ऐसा लगने लगा था कि पूरी दुनिया में तारा परी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं था, ना ही परीलोक में और ना ही पृथ्वीलोक में। और इसीलिए अमन जब भी तारा के करीब होता था, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। और अब अमन तारा पर पूरी तरह से हावी होने लगा था और उसे पैशनेटली चूमने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों आगे बढ़ पाते, तभी उन्हें घर में किसी के होने का एहसास हुआ। वो कोई और नहीं, अमन और करिश्मा जी थे। अमन और करिश्मा जी और अमरेंद्र जी पिशाचिनियों के जंगल से लौट आए थे और उन्होंने बंगले में घुसते ही अपने बेटे अमन को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया था। कहीं न कहीं उन्हें इस बात का यकीन था कि तारा बहू जरूर तब तक अमन को ऑफिस से घर ले आई होगी, तो इसीलिए वे सीधे घर ही आए थे। और तब अमन ने तारा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, अभी चलो मम्मी पापा से मिल लेते हैं, वे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे और रात तो अपनी ही है। वो शरारत से अपनी एक आंख तारा की ओर आई विंक कर दिया और तारा हल्का सा मुस्कुरा गई। कहीं ना कहीं अमन के साथ रहने पर तारा को उससे दूर होने का डर अब पूरी तरह से सताने लगा था। वो सोचने लगी थी कि क्या वो अमन के बिना रह पाएगी, क्योंकि उसे उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुकी थी और अमन के बिना रहना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो परीलोक में नहीं गई तो वो राक्षस पृथ्वी पर आकर उसे ले जाएगा, लेकिन वो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही तारा ने एक बार और करिश्मा जी की आवाज़ सुनी, तो वो तुरंत नीचे आ गए। जैसे ही तारा और अमन नीचे गए, करिश्मा जी दौड़कर अमन के गले लग गई। अब अमरेंद्र जी भी अपने बेटे को प्यार करने लगे और कहने लगे, बेटा बेटा तुम ठीक हो ना? अब तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? तभी अमन अपने पिता की ओर देखते हुए कहने लगा, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी करिश्मा जी ने तारा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची अब सब कुछ ठीक होता हुआ सा नजर आने लगा है, अमन के पिताजी लौट आए हैं और तुम जिन्नातों के वंशज को जन्म देने वाली हो। अब बस हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर न लगे। ऐसा कहकर करिश्मा जी ने तारा परी का माथा चूम लिया और तारा मुस्कुरा गई। और तभी अमरेंद्र जी तारा के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बेटी तुम हमें भी माफ कर दो, कहीं ना कहीं सब चीजों में हमने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था, लेकिन हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बहू इतनी बहादुर होगी। कितनी आसानी से तुमने सारी मुश्किलों का सामना किया, कहीं ना कहीं हम तुम्हारी बहादुरी के कायल हो गए हैं। ऐसा कहकर वे मुस्कुरा दिए। तभी अमन भी प्राउड नजरों से अपनी बीवी की ओर देखने लगा और कहने लगा, मैं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई है। ऐसा कहकर अमन भी मुस्कुरा दिया। पूरी तरह से अमन का परिवार एकदम हंसी खुशी खुशियों से भरा हुआ परिवार लग रहा था। सभी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। करिश्मा जी की जिंदगी में उनके पति लौट आए थे और तारा की जिंदगी में अमन बिल्कुल ठीक हो चुका था। साथ ही साथ वो माँ बनने वाली थी, तो कहीं ना कहीं तारा परी बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन किसी को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उनकी खुशियों पर बहुत बुरी और भयानक नजर लगने वाली थी, उनकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने वाली थी। तभी करिश्मा जी ने अमन की ओर देखते हुए कहा, बेटा तुम लोगों की जिंदगी में इतने दिनों से इतना कुछ चल रहा था, तो क्यों ना तुम एक काम करो, तारा बेटी को कुछ पल के लिए कहीं घूमने ले आओ, इसे पूरा शहर दिखा कर ले आओ। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, अमन मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा मॉम, लेकिन हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग भी जा रहे हो। तभी करिश्मा जी हैरान होकर अमन की ओर देखने लगी और कहने लगी, हम कहाँ जा रहे हैं भला। तभी तारा और अमन मुस्कुराने लगे और जल्दी ही उन्होंने कुछ टिकट्स अमरेंद्र जी और करिश्मा जी को दे दिए और कहने लगे, मॉम डैड को ढूंढने के लिए आप हमेशा किटी पार्टी का बहाना बनाया करती थी, तो हमने इसीलिए आपके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हम सभी को डैड से इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे कि डैड काफी सालों के बाद फॉरेन से लौट आए हैं और एक गेट टुगेदर करेंगे।
जैसे ही अमन ने ये कहा, करिश्मा जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, लेकिन बेटा इन सब की क्या जरूरत है, तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारे कितने ज्यादा दुश्मन हैं और इस तरह से तो हम सबकी नजरों में आ जाएंगे। तभी अमन करिश्मा जी की ओर देखते हुए बोला, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि कितने दिनों से हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे हम दुनिया की नजरों में आ सकें, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम इस शहर का सबसे बड़ा और धनी परिवार है और बिजनेस में है। अगर इस तरह से हम लोगों से नहीं मिलेंगे या पार्टी वगैरह नहीं करेंगे तो हम लोगों की नजरों में आ सकते हैं। वैसे भी लोग नजरों में बने रहने के लिए हमें ये पार्टी वगैरह टाइम टू टाइम पर करते रहना चाहिए, वरना लोग हमारे होने पर संदेह करने लगेंगे। जैसे ही अमन ने ये कहा, करिश्मा जी ने अमन की बातों में हाँ में हाँ मिला दी थी। कहीं ना कहीं अमन जो कुछ कह रहा था ठीक कह रहा था। वैसे भी काफी दिनों से करिश्मा जी ने किसी तरह की कोई पार्टी नहीं दी थी, जबकि वो टाइम टू टाइम पर लोगों की नजरों में बने रहने के लिए काफी सारी पार्टी वगैरह किया करती थीं, क्योंकि वे जानती थीं जिन्नातों को इंसानी लोगों के बीच रहने के लिए उनकी नजरों में रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यही सोचते हुए जल्दी ही उन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी करने का फैसला कर लिया था। तब तारा ने अमन से कहा, अमन इतने दिनों के बाद हम ये पार्टी कर रहे हैं तो हम किसी को ये तो नहीं बता सकते हैं ना कि हम लोग खुश हैं, हम इसलिए पार्टी कर रहे हैं। क्यों ना हम लोगों को ये बताएं कि आप जिस विदेशी ट्रिप पर गए थे वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है, इसी खुशी में आप ये पार्टी दे रहे हैं। जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन उसे तारीफ भरी नजरों से देखने लगा और कहने लगा, वाकई ब्यूटी विद ब्रेन। ऐसा कहकर अमन मुस्कुरा दिया और अमन की बात सुनकर तारा, करिश्मा जी और अमरेंद्र जी हंसने लगे। फिर कहने लगे, वाकई हमारी बहू ब्यूटी विद ब्रेन ही तो है। जल्दी ही वे लोग हंसी खुशी पार्टी की तैयारी में डूब चुके थे। वहीं दूसरी ओर अमित और मल्लिका को जैसे ही अमन की पार्टी का इनविटेशन मिला तो उनके चेहरों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि वे खुद अमन से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि किस तरह से अमित एक बार फिर अपनी दोस्ती अमन के साथ आगे बढ़ा सके और मल्लिका इस बार तारा को अपने शीशे में उतार सके। तो यही सोचते हुए अब उन्हें रास्ता मिल चुका था और मल्लिका ने सोच लिया था कि वो अपने आप को इस तरह से अमन के सामने प्रेजेंट करेगी कि अमन अब उसके होने को इनकार नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं सब अपने अपने प्लान के साथ रेडी थे। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का महागुरु अमन के पिता के रिहा होने के बाद से गुस्से की आग में पागल हो चुका था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर विक्रांत ने बीच में टांग नहीं अड़ाई होती या उसकी राक्षसी हिडिम्बा को हराकर अमन के पिता को अपने कब्जे में नहीं लिया होता तो अमन के पिता कभी भी आज़ाद नहीं हो पाते। लेकिन अब उन्हें इस बात का पता तो चल चुका था कि विक्रांत यानी राक्षस का अंश अब इस धरती पर नहीं था। तो यही सोचते हुए उन्होंने अब जिन महाराज के परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना एक ऐसा हथियार तैयार किया था जो काली शक्तियों के मालिक अमित से भी ज्यादा तेज और खतरनाक था। जैसे वे अमन के खिलाफ प्रयोग करने वाले थे, क्योंकि काली शक्तियों के गुरु को लगने लगा था कि अगर यही सब चलता रहा तो बहुत जल्द सफ़ेद जन्नत हमेशा हमेशा के लिए काली शक्तियों का खात्मा इस पूरी दुनिया से कर देंगे, और काली शक्तियों का गुरु ये नहीं चाहता था। वो किसी भी कीमत पर जिन महाराज को जीतते हुए नहीं देखना चाहता था। इसके लिए उसने कितने ही पापड़ बेले,
भले उसने 15 सालों से अमन के पिताजी को अगवा करके रखा हुआ था, लेकिन वो उनकी जान नहीं ले पाया था। और जबकि अमन के दादा जिन महाराज ने काली शक्तियों के गुरु के पूरे परिवार के वंशजों का अंत कर दिया था, तो कहीं ना कहीं इस बात का बदला वो अमन के परिवार से लेना चाहते थे। लेकिन वो अमन के पिताजी तक को नहीं मार पाए थे, क्योंकि जब वे अमन के पिताजी को मारने के लिए जाया करते थे, उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो उनका कोई गला दबा रहा हो और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती थी। तो उन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि अमन के पिता अमरेंद्र जी की जान लेना इतना आसान नहीं था, वरना इसीलिए उन्होंने अमन के पिताजी को पूरे 15 साल तक के लिए अगवा करके रखा हुआ था। उन्होंने सोचा कि अगर वे उसकी जान नहीं ले सकते तो क्या हुआ, लेकिन उसे उसके परिवार से दूर तो कर सकते हैं, उसके बच्चों से, उसके बाप जिन महाराज से दूर तो कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी एक राक्षसी हिडिम्बा के हाथों अमन के पिता को अगवा करके रखा हुआ था। लेकिन विक्रांत की बेवकूफी की वजह से अमन के पिता आजाद हो गए थे, तो इसीलिए काली शक्तियों का महागुरु किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने अब अपना एक ऐसा हथियार उन लोगों की जिंदगी में तहलका मचाने के लिए भेजने का फैसला कर लिया था, जिसे अमन के लिए हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था।